मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 20 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियमित तौर पर मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। सूचनाएं ये हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वे शनिवार को आपको एज इट इज़ मिलेंगी। साथ ही योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, उसमें एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का, और कुरुक्षेत्र पत्रिका के भी 2 आर्टिकल्स आपको दिए जाएंगे, उनमें भी 1 आर्टिकल इंग्लिश का होगा और 1 हिंदी का। और इसके साथ ही एक वीकली क्वेश्चन साप्ताहिक प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, ताकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने का अभ्यास भी आप साथ साथ कर सकें। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में एग्जामिनेशन की तैयारी यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में आपसे कोई बात नहीं कर सका, क्योंकि दूसरी इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आती रहीं कि मुझे लगा कि इन्हें बासी करने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। जब भी अवसर मिलेगा तब मैं आपसे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के बारे में कुछ बातें करूंगा। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने जा रहा हूं और मेरे आज के विषय का संबंध पिछले सप्ताह के विषय से है। पिछले सप्ताह मैंने भाषा के बारे में बातें की थी कि दरअसल हम जिसे अपना माध्यम कहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, क्या सच में उस भाषा पर हमारी वास्तव में वह पकड़ है जिसे हम एक भाषाई पकड़ कह सकते हैं। इस बारे में खासकर मैंने पाया है कि युवाओं के दिमाग में बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूं जो हर साल 1000 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल लाइवली इंटरेक्शन करता है। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस लगती हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स आते हैं और पूरी तरह से स्टूडेंट को समर्पित मेरा पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ और क्लासेस में सुन रहे, इसके बाद भी मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रहती है। मैं अपनी ओर से बुला बुला करके स्टूडेंट से बात करता हूँ और सबको ये निर्देश होते हैं कि प्लीज़ आप आइए और मुझसे बात कीजिए, मुझे समृद्ध बनाइए, मुझे बातचीत करने का मौका दीजिए। जब उनसे मैं बातें करता हूँ, बातचीत करने के दौरान उनके चेहरे देखता हूँ, हाव भाव सब चीज़ों का मूल्यांकन करता हूँ, तो मुझे बहुत साफ तौर पर नज़र आ जाता है कि स्टूडेंट की मूलभूत कमजोरी क्या है या कमजोरियाँ क्या हैं। यहाँ चूंकि मुझे भाषा के बारे में बातें करनी हैं तो मैं भाषा पर ही अभी अपनी बात को केंद्रित रखूँगा। दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट, ज़्यादातर क्या मतलब, मैं प्रतिशत के बारे में अगर बात करूँ तो बहुत बड़ा प्रतिशत होगा, बहुत छोटा सा ही प्रतिशत उसमें से ऐसा होता है जिनकी भाषा को मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की भाषा के अनुकूल मान सकता हूं। और देखिए मैं भी जिस भाषा की बात कर रहा हूं वो बोलने की भाषा की बात कर रहा हूं। अगर आपके बोलने की भाषा अच्छी नहीं है तो हो ही नहीं सकता कि आपके लिखने की भाषा अच्छी होगी। हाँ एक बात जरूर हो सकती है कि हो सकता है कि आप बोलने में उच्चारण की गलतियां कर रहे हो और लिखने में आप वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर मुझे यह भी लगता है कि बोलने की भाषा हो सकता है कि आप सही बोल रहे हो लेकिन लिखने की भाषा में बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो, क्योंकि हिंदी में मात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ, छोटे ई की जगह बड़ी, इस तरह की गलतियां आपसे हो रही हों। और मैंने फिर महसूस किया कि जब भी मुझे मौका मिला कि मैं लिखे हुए को पढ़ूं तो उस तरह की गलतियां मुझे मिली और खूब सारी मिली। और फिर मैं इस मायने में भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि साल में मतलब 1 सप्ताह में मेरे पास कम से कम 250 से 300 मेल्स आते हैं मिनिमम, आप लोगों के लिखे हुए मेल, उन्हें भी मैं पढ़ता हूं। तो साफ तौर पर मुझे दिखाई दे जाता है कि नहीं, भाषा के स्तर पर आप सबको बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। इस बात के लिए मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि भाषा के स्तर पर काम करने की जरूरत है। देखिए भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक सामान्य पक्ष होता है और दूसरा लालित्य और विषयगत पक्ष होता है। सामान्य पक्ष के तहत आप बहुत बेहतर हैं क्योंकि आप लेक्चर सुनते हैं, समझ लेते हैं, हिंदी मीडियम की किताबें पढ़ते हैं, उन्हें भी आप समझ लेते हैं, वहां आपको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। लेकिन जब आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी करते हैं तो वहां 2 बातों की जरूरत होती है कि एक तो आपके भाषा में लालित्य हो, लालित्य कहने का मतलब है कि उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता हो, आपकी भाषा ऐसी हो जिसे एग्जामिनर पढ़ना चाहे, पढ़ना उसे अच्छा लगे। देखिए आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपको उनकी बात ही सुननी पसंद आती है जिनकी भाषा आपको अच्छी लग रही हो, अगर उसकी भाषा खराब होगी तो बात चाहे वो कितनी भी अच्छी कर रहा हो, आप उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। एग्जामिनर को भी आप इसी तरह से मान करके चलिए, उसका भी अपना मनोविज्ञान है, वह भी एक मनुष्य है। तो अगर आपके भाषा में लालित्य है तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा ही होगा। जो इसका दूसरा पक्ष है वह शुद्धता का है कि आप कितनी शुद्ध भाषा लिख रहे हैं और साथ ही साथ आपकी भाषा कितनी विषयगत है। विषयगत का मतलब है कि जब आप इकोनॉमिक्स के आंसर दे रहे हैं तो आपकी भाषा में इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां आनी चाहिए। जब आप समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं तो एक अलग किस्म की भाषा होगी। जब आप राजनीति विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं, जिस किसी भी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल अलग होगी कहने का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन हर जितने भी विषय होते हैं, हर विषय की अपनी एक शब्दावली होती है। आपके पास उन शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस पर जाते हैं या समाजशास्त्र पर जाते हैं या हम ऐसे लिख रहे हों तो डेफिनेटली हमारी भाषा में आधुनिकता के तत्व होने चाहिए। आधुनिकता के तत्व कहने का मतलब है कि कोई भी भाषा लगातार विकसित होती रहती है, वो तरल पदार्थ की तरह बहती रहती है। क्या आपने अपनी भाषा को उस तरह का बनाया है? क्या आपकी जो भाषा है वो वर्तमान की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है? जब आप अखबार पढ़ते हैं, जब आप मैगजीन में चीजें पढ़ते हैं, जब आप न्यूज सुनते हैं, तब आपने महसूस किया होगा कि बहुत से नए नए शब्द उसमें इजाद होते रहते हैं, नई नई शब्दावलियां आती रहती हैं। तो क्या आपने उन शब्दावलियों को अपनी भाषा में शामिल किया है या नहीं किया है? ये सारी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उस भाषा पर आपकी पकड़ बनती है। देखिए, भाषा रटने से नहीं आती है, भाषा आती है प्रयोग करने से। और अब अनफॉर्चुनेट पार्ट यह हो गया है कि प्रयोग करने की जो संभावनाएं हैं वो आपके लिए न्यूनतम हो गई है। आप सोच करके देखिए कि आप भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग, मैं बोलने की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लिखित भाषा का प्रयोग आप कर कहां रहे हैं? ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेज, और उसमें आप अपनी बात को संक्षिप्त से संक्षिप्त कहना चाहते हैं, बहुत ही छोटे में कहना चाहते हैं कि बस उसके समझ में आ जाए। उस भाषा में आपको न तो लालित्य दिखाई देता है, न आधुनिकता बोध दिखाई देता है, न बहुत ज्यादा कोई प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, कम्युनिकेट आप कर लेते हैं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं लगभग लगभग वह बात दूसरे तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए बात तो पहुंच गई, लेकिन बात बनी तो नहीं। या ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आप भोजन करते हैं, पेट तो भर गया लेकिन मजा नहीं आया, या यूं कह लीजिए कि पेट तो भर गया लेकिन शरीर को उस भोजन के माध्यम से जो पौष्टिक तत्व तो मिलने चाहिए थे वो पौष्टिक तत्व तो नहीं मिले, तो पौष्टिकता के अभाव में तो भोजन खाना एक तरह से आधा अधूरा ही रहा। तो दोस्तों, आपको भाषा को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा, उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील दृष्टि रखनी होगी और उसके लिए अलग से परिश्रम करना होगा। अब आप परिश्रम करेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है। मैंने अभी कहा कि भाषा का प्रयोग किया जाना और लिखित तौर पर प्रयोग किया जाना, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो बोलने की भाषा होती है, जब आप बोलते हैं तो कुछ सोच विचार कर नहीं बोलते हैं, आपको ये मालूम रहता है कि ये बात कहनी है इस विषय पर, आप बोलते चले जाते हैं। लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो लिखने की स्पीड कम होती है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका दिमाग बहुत सोच विचार कर आपके उंगलियों को हरकत में लाता है। वो धीरे धीरे, चूंकि उंगलियां चलती हैं तो दिमाग भी धीरे धीरे सोचता है, और फिर उसमें नए नए शब्द आते जाते हैं, वाक्य नए तरीके के बनते चले जाते हैं, आपका दिमाग विचारों के स्तर पर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें ला करके उसकी आपूर्ति करता है और आपको समृद्ध बनाता है। लिखने का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। जब मैडम प्रीति अग्रवाल के पास स्टूडेंट्स के फोन आते हैं और स्टूडेंट अपनी बात या तो मुझे बता दें या फिर ईमेल के जरिए लिख करके भेज दें और वो ईमेल पढ़ते हैं और आपको जवाब मिल जाएगा, वो ऐसा कहती हैं। मजेदार बात है कि वो कभी ईमेल लिखते ही नहीं। मैं सोचता हूं कि अगर बात करना इतनी जरूरी थी तो वो ईमेल लिखते क्यों नहीं है। बात बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ जाती है कि वो ईमेल इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी, लिखने में सोचना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, कैसे शुरुआत करें, कैसे अंत करें, कौन कौन सी बात रखें, कौन कौन सी बात छोड़ें, टाइम भी लगेगा, लेकिन वो इतने बिजी हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो ईमेल लिख सके। आप लिखने से बचना चाहते हैं। अगर आप लिखने से बचेंगे तो आप उस भाषा को विकसित नहीं कर सकेंगे जो भाषा वास्तव में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होनी चाहिए, वहां उसकी कमी रह जाएगी। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी इन बातों में आपको कुछ बातें थोड़ी सी खटकने वाली लगी हों, आपको ऐसा भी लग रहा हो कि मैं आप सब पर कोई आरोप लगा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब ये देखिए कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं। अगर हैं तो आपको हिंदी मीडियम को लेकर के किसी भी तरह से आशंकित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास कीजिए कि अगर आपकी भाषा अच्छी है, फिर तैयारी आपने ठीक ठाक कर ली है, तो भाषा के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं होता। इसी सप्ताह मैंने दो स्टूडेंट्स के आपको नाम बताए थे जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, 23rd और 27th शायद ये रैंकिंग थी, जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट थे और इन्हें उन्होंने इतनी हाई रैंकिंग स्कोर की, तो आखिर में की ही ना। आप भी कर सकते हैं, किसी भी रीजनल लैंग्वेज का मीडियम हो आपका, आप स्कोर कर सकते हैं। बस एक मेरा अनुग्रह है और बहुत ही संवेदनशील अनुग्रह है कि भाषा को आप बेहतर बनाएं, कम से कम एक स्तरीय भाषा तो हासिल कर ही लें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, अब दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और तब ढेर सारी बातें होंगी। और इससे पहले कि मैं आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करूं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं और मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।